नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि G20 और G7 के सदस्य देशों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर सकते हैं। इस वर्ष G20 की अध्यक्षता भारत के पास है, जबकि G7 का मौजूदा अध्यक्ष जापान है। सीतारमण ने कहा कि जापान ने उन्हें G7 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की मई में होने वाली बैठक में आमंत्रित किया है और वह इस पर विचार कर रही हैं। उन्होंने कहा, हम जापान की सरकार के साथ और अधिक संवाद के लिए उत्सुक हैं और उसके G7 का अध्यक्ष होने के नाते हम परस्पर हित एवं सहयोग के क्षेत्रों की संभावनाएं तलाश रहे हैं, ताकि हम साथ आ सकें और वैश्विक जरूरतों को पूरा कर सकें। वित्त मंत्री ने कहा कि दोनों देश खाद्य सुरक्षा, विकास वित्त, जलवायु एवं ऊर्जा, पर्यावरण, डिजिटलीकरण, आपदा जोखिम में कमी और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 6.1% से घटाकर 5.9% करने के पीछे की मुख्य वजह घरेलू खपत में आ रही सुस्ती और आंकड़ों में हुए संशोधन हैं। IMF ने गत मंगलवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर पूर्वानुमान को घटा दिया था। इसके साथ ही मुद्रा कोष ने कहा कि भारत इस गिरावट के बावजूद दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक कृष्ण श्रीनिवासन ने कहा कि भारत के वृद्धि दर अनुमान में कटौती के पीछे मुख्य रूप से दो कारक रहे हैं। एक कारण घरेलू खपत की वृद्धि में आ रही हल्की सुस्ती है। दूसरा कारक 2019 से 2020 में आंकड़ों का संशोधन है, जिससे आर्थिक स्थिति पता चल सकती है। महामारी से पहले स्थिति कहीं बेहतर थी। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामारी का प्रभाव हमारी सोच से कहीं अधिक सीमित था और पुनरुद्धार अधिक सशक्त रहा है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि वह इस साल दूसरी छमाही में अपनी नई SUV एक्स्टर बाजार में उतारने की योजना बना रही है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने बयान में कहा कि शुरुआती स्तर वाला नया मॉडल कंपनी के मौजूदा SUV वेन्यू एन लाइन, क्रेटा, एल्काजार, कोना इलेक्ट्रॉनिक, टूसो और आइकॉनिक 5 की पंक्ति में शामिल होगा। बयान के अनुसार एक्स्टर को वेन्यू से पीछे रखा जाएगा, जो अभी कंपनी शुरुआती स्तर की SUV है। इसे चालू वर्ष की दूसरी छमाही में पेश किया जाएगा। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी तरुण गर्ग ने कहा, SUV श्रेणी में हुंडई एक्स्टर हमारा 8वां मॉडल है और हमें विश्वास है कि हमारे परिवार का ये नया सदस्य SUV बिक्री में हमारी वृद्धि को और गति प्रदान करेगा। EU के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते में भारत किसानों और डेयरी क्षेत्र के हितों की पूरी तरह से रक्षा करेगा, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा। गोयल यहां दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और बढ़ावा देने के तरीके खोजने और इस विषय में निजी क्षेत्र तथा नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए आधिकारिक दौरे पर आए हैं। वह भारत फ्रांस कारोबारी सम्मेलन में शामिल होने के लिए पेरिस भी गए थे। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते के लिए वार्ता का शीघ्र समापन हो सके, इसके लिए इटली और फ्रांस ने पूर्ण समर्थन की पेशकश की है। उन्होंने बताया कि इटली और फ्रांस में बैठकों के दौरान भारत ने दोनों क्षेत्रों में भिन्न आर्थिक परिस्थितियों और प्रति व्यक्ति आय पर जोर दिया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परशोत्तम रूपाला ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि देश में मक्खन जैसे डेयरी उत्पादों का आयात नहीं किया जाएगा, बल्कि सरकार आपूर्ति बढ़ाने के लिए बड़े एवं अप्रयुक्त घरेलू क्षेत्र की मदद लेगी। रूपाला ने एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत में कहा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, आयात नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में दूध की कमी नहीं है और सरकार इस ओर नजर बनाए हुए है। डेयरी मंत्री ने कहा, मांग बढ़ गई है, हमारे यहां अप्रयुक्त क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसका लाभ उठाने का प्रयास किया जाएगा। हम उचित प्रबंध करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने किसानों और उपभोक्ताओं को बेफिक्र रहने को कहा। डेयरी उत्पादों के खुदरा मूल्य में वृद्धि के बारे में उन्होंने कहा कि दामों को लेकर भी चिंता नहीं की जानी चाहिए और किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत की वित्तीय प्रणाली अमेरिका और स्विट्जरलैंड के हाल के घटनाक्रमों से पूरी तरह अछूती है तथा वह इनसे प्रभावित नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि देश की बैंकिंग प्रणाली जुझारू, स्थिर और दुरुस्त है। दास ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड की बैंकिंग प्रणाली में हाल ही में जो घटनाक्रम हुए, उनसे एक बार फिर वित्तीय स्थिरता और बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता का महत्व सामने आया। RBI गवर्नर यहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सालाना बैठकों में शामिल होने आए हैं। सिलिकॉन वैली बैंक के विफल होने के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जहां तक भारत की बात है तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली, भारत की वित्तीय प्रणाली, ये अमेरिका या स्विट्जरलैंड में हुए किसी भी घटनाक्रम से पूरी तरह अछूते हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली जुझारू, स्थिर और दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग से संबंधित मानकों की बात करें, चाहे वह पूंजी पर्याप्तता हो, दबाव ग्रस्त संपत्तियों का प्रतिशत हो, बैंकों का शुद्ध ब्याज मार्जिन हो, बैंकों की लाभप्रदता हो, चाहे जिस भी मानक को देखा जाए, सभी के लिहाज से भारत की बैंकिंग प्रणाली स्वस्थ बनी हुई है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।